आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज्योति कुमारी है और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने चलते हैं जो है मानव संसाधन। ये ज्योग्राफी का 6th चैप्टर है, 5th तक हमने कंप्लीट कर लिया है और होप सो कि आप सबने वो सारी जितने भी चैप्टर्स हैं प्रीवियस वो रिवाइज कर लिए होंगे। मानव संसाधन जो नया चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं, पहले उसके बारे में कुछ चीज़ें जो बेसिक नॉलेज होती है उसे डिस्कस कर लेते हैं। मानव संसाधन मतलब इसके जो ये वर्ड है उससे आप क्या समझते हैं? मानव यानी कि इंसान, संसाधन यानी कि रिसोर्सेज। संसाधन जैसा कि हमने पिछले चैप्टरों में पढ़ा है कि संसाधन क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो किसी ना किसी तरीके से या तो डायरेक्टली है ना डायरेक्टली या तो यूज़ करते हैं हम उसे अपने इस्तेमाल में या फिर इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे कैसे कर सकते हैं? जैसे लकड़ियाँ हैं, लकड़ियाँ हम सीधे सीधे चूल्हे पे खाना इस्तेमाल भी कर सकते हैं खाना बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, या फिर उस लकड़ी से जो है हम उसे पूरा काट के छील के उसके टेबल बना सकते हैं या माचिस बना सकते हैं, कागज़ बना सकते हैं। तो ये हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर में इनडायरेक्टली वे में लकड़ियों को इस्तेमाल करना। तो ये है संसाधन, मानव संसाधन। लेकिन इन दोनों ही चीज़ों से मानव संसाधन जो है वो रिलेट करता है पर पूरा पूरा कह सकते हैं फिट नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि मानव को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, मानव की वैल्यूज़ को बढ़ाया जा सकता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मानव वैल्यूज़ को कैसे, मतलब इंसान की वैल्यू को कैसे। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, इससे बहुत अच्छी तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे। ज़रा सोचिए कि जब आप बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, जिस वक्त आप चल भी नहीं सकते थे, धीरे धीरे आपने चलना सीखा, तो इससे आपके पास एक क्या बेसिक हुनर आया, चलने का। उसके बाद आपने भागना सीखा, उसके बाद बचपन में हमें साइकिल चलाना सिखाया जाता है, तो वो भी क्या हुआ, एक इजाफा हुआ उसी चीज़ में, मतलब कि हमारी क्वालिटीज़ में जो है हमारी काबिलियत में थोड़ा और बढ़ावा मिला। उसके बाद हमको लिखना पढ़ना धीरे धीरे, पहले एक एक अल्फ़ाबेट लाइनें डालना बिंदियाँ डालना ये सिखाया गया, फिर उसके बाद हमें ए बी फिर अपना नाम, धीरे धीरे करके जो है हमारी काबिलियत बढ़ती गई, मतलब हमें अलग अलग चीज़ें सिखाई गई। और जैसे ही हम थोड़े बड़े हुए तो हमारी जो डांस की क्लासेस होती हैं या जिसको जो भी खेलकूद पसंद है उसमें हमें डाल दिया जाता है और हम वो भी साथ के साथ, वो एक्टिविटी जो है साथ के साथ करते रहते हैं और उसके साथ पढ़ाई। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम अपनी क्वालिटी जो है, अपनी काबिलियत जो है वो बढ़ाते रहते हैं। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, ये मानव संसाधन को जो है बढ़ावा मिलना हुआ, मतलब कि मानव को ये भी चीज़ आती है, उसे सब चीज़ें आती हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ें जो लोग सीखते हैं उनका जो कह सकते हैं वैल्यू, उनकी महत्व और उतना ही बढ़ता रहता है। अच्छा, अब इस बात पे आप फ़र्ज़ कीजिए कि जैसे कि क्लास में एक बच्चा है, उसे सिर्फ पढ़ाई में वो बहुत तेज़ है, ठीक है, वो पढ़ाई में बहुत तेज़ है, और दूसरा बच्चा है वो पढ़ाई में भी तेज़ है, साथ ही वो खेलकूद में भी तेज़ है, डांस में भी तेज़ है, सिंगिंग में भी तेज़ है, हर चीज़ में वो बहुत तेज़ है। तो आप क्या कहेंगे कि इस दोनों का कंपैरिजन अगर करें तो किसके पास ज़्यादा उसकी कह सकते हैं वैल्यू होगी, जिसको सब कुछ आता है? सेम यही चीज़ होती है मानव संसाधन। मानव संसाधन मतलब कि किस इंसान को कितनी ज़्यादा उसकी क्वालिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो है मानव संसाधन में आती हैं, जिसको जीने रहने के बहुत सारे तरीके आते हैं, वो बहुत तरीक़ों से रास्ता निकाल लेता है जो मानव, उसे ही कहते हैं संसाधन बनना। यानी कि उसे जितनी क्वालिटीज़ सीखी हैं वो उतना ही चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने यूज़ लायक बना सकता है, और जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका उपभोग, उपभोग क्या होता है, उसे यूज़ कर सकता है, उसका सुख ले सकता है। अब जरा सोचिए कि अगर मानव ने आग की खोज ना की होती तो क्या आज की डेट में हम लोग पका हुआ खाना खा पाते? लेकिन जिस मानव ने आग की खोज करी इसीलिए आज हम पका हुआ खाना खा सकते हैं। कच्चे खानों से हट करके आज की डेट में अगर हमारे सामने कोई कच्चा खाना खाए तो हम उसे क्या कहेंगे कि बेचारा, इसको तो ज़िंदगी असल में जीने का मतलब ही नहीं पता है, देखो कच्चा खाना खा रहा है, जबकि हम पका हुआ खाते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारी वैल्यूज़ में बढ़ोतरी हुई। किस वजह से? हमारे दिमाग, हमारी स्किल की वजह से, ठीक है। तो ये जो हुआ ये मानव संसाधन की वजह से हुआ। इन सब चीज़ों में अगर मैं आपको एक बहुत ही शुद्ध हिंदी जो आपकी किताबों में लिखी होती है उस तरीके से बताऊं तो स्वस्थ रहना मतलब ज़िंदगी में हेल्दी रहना। हेल्दी रहने के लिए खेल कूद करते हैं हम, खान पान अपना अच्छा करते हैं। स्वस्थ इसलिए क्योंकि अगर हम बीमार रहेंगे तो हम पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, हम कोई काम भी नहीं कर पाएंगे और हम खुश भी नहीं रह पाएंगे। तो स्वस्थ रहना, शिक्षित होना, शिक्षित इसलिए ताकि हम जो है अपना कह सकते हैं हम अपनी बेसिक वैल्यूज़ को मेंटेन रखें, हम लिख पढ़ सकें, किताबें पढ़ सकें और जो है अपना दिमाग और ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा अच्छा बना सकें, विवेक बन सकें। उसके अलावा अभिप्रेरित मतलब कि मोटिवेटेड, क्योंकि जो व्यक्ति जो है, जो इंसान जो है वो मोटिवेट नहीं रहता तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लीजिए कि आपने किसी बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर को देखा अपने सामने से जाते हुए, है ना, जिसकी बहुत सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपने सोचा कि आप ही बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, तो वो चीज़ क्या हुई, आपको प्रेरणा देती है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको शिक्षा लेनी है, आपको अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है, आपको अपना कह सकते हैं जो डेली रूटीन है वो ठीक रखना है। तो ये एक तरीके से मानव संसाधन की तरह यूज़ होगा, क्योंकि डॉक्टर या पुलिस मैन बनने के बाद जो है आप सिर्फ अपने में नहीं रहेंगे, आप बहुत सारे लोगों का भला करेंगे। जैसे डॉक्टर जो है वो बहुत सारे मरीजों को देखता है और उन्हें ठीक करता है, तो एक तरीके से वो क्या कर रहा है, वो बहुत सारे लोगों के लिए काम आ रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है। उसके अलावा अगर पुलिस मैन है वो सबकी प्रोटेक्शन कर रहा है, सबका एकदम सिक्योरिटी देख रहा है, तो वो भी हेल्प कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक तरीके से वो किसी के काम आ रहा है ना, इसीलिए वो संसाधन है। जितनी भी सर्विसेज होती है ना जिसमें कोई किसी के लिए यूज़ आ रहा है, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, मानव संसाधन। जैसे कोई ड्राइवर ही क्यों नहीं है, लेकिन अगर वो हमारे लिए गाड़ी चला रहा है, हम कहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो भी एक मानव संसाधन है। अब इसके बाद बात करते हैं कि अन्य संसाधन की भांति मानव संसाधन भी किस तरीके से जो है समान रूपों में विस्तृत नहीं, मतलब कि इसमें टोटल ये बात है इस चैप्टर में, थर्ड पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है जैसे बहुत सारे जितने भी संसाधन हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हैं अमाउंट में, डिफरेंट डिफरेंट संख्या में जो है बटे हुए हैं। अब कहीं पे हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि कहीं पे लोहा बहुत ज़्यादा है, कहीं पे कॉपर है, कहीं पे एल्युमिनियम है, कहीं खनिज है, कहीं जल बहुत है, कहीं पे सोना बहुत है। तो ये जितना भी अनबैलेंस्ड कह सकते हैं, अनबैलेंस्ड तरीके से जितना ये संसाधन बटा हुआ है, तो ये क्यों बटा है वो तो हमने पढ़ा था कि जलवायु की वजह से। जलवायु होता है उसके हिसाब से टेम्परेचर, जलवायु में ही वो तो खैर आ जाता है इसके हिसाब से। और दूसरी मिट्टी, मिट्टी के भी बहुत प्रकार थे, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, है ना, ये सारी चीज़ें जो है मिल करके ये फैक्टर जो है, कारक जो है वो बनाती हैं। इसके अलावा मानव संसाधन क्यों है, तो इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ, इससे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कहीं तो बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं और कहीं पर बहुत कम लोग रहते हैं। इंडिया को अगर आप देखें, सिर्फ अभी मैं वर्ल्ड की बात नहीं कर रही, अभी सिर्फ इंडिया की बात कर रही हूँ, कि अगर इंडिया में आप देखें तो जितने भी वो इलाके हैं, मान लीजिए जो गंगा घाट के इलाके हैं, गंगा नदी हम सब जानते हैं ना, गंगा हमारी माता है, हमारे घर में कहते हैं, जो गंगा घाट के इलाके हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी बसती है, क्योंकि वो कैसे इलाके हैं, वो मैदानी इलाके हैं, मतलब वो प्लेन इलाके हैं, वहाँ कोई पहाड़ नहीं है। दिल्ली में आपको कोई पहाड़ देखने को मिलता है? हाँ, पहाड़गंज का है वो, ठीक है, लेकिन उसके अलावा और कोई नहीं है, मतलब, और वो भी पहाड़ जो है वो वैसे पहाड़ नहीं है जैसे हिमालय रीजन वगैरह के होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे मैदानी इलाके, उत्तर प्रदेश का इलाका ले लो, या फिर आप वहाँ से बढ़ते वक्त हरियाणा का इलाका ले लो, या उसके अलावा पंजाब की तरफ जाओ, गुजरात की तरफ, है ना, ये सारे जितने भी इलाके हैं, मध्य प्रदेश की तरफ जाओ, ये जितने भी इलाके हैं ये ऐसे नहीं है कि यहाँ पर पहाड़ वहाड़ मिले, लेकिन वो इलाके जो मणिपुर या कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड पे जो हैं वो इलाके, या उत्तर के इलाके, बहुत उत्तर मतलब जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ के इलाके, ये सब इलाके हैं, यहाँ पर जो आबादी है वो कम है। कम इसलिए है क्योंकि आप खुद अगर कभी घूमने फिरने जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि पहाड़ में जो लोग रहते हैं ना, उनको अपनी बेसिक ज़रूरतें, मतलब कि कुछ भी खरीदना है या कुछ भी लाना है, ले जाना है, उसके लिए पहाड़ी चढ़नी भी पड़ती है और उतरना भी पड़ता है। वो ये कह सकते हैं कि वो उनके डेली रूटीन में है, मतलब वो पहाड़ी चढ़ने और उतरने के आदी हैं। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें बहुत कह सकते हैं असुविधाजनक है। अब यही देखिए कि अगर आपको कोई भी चीज़ दुकान से आप लाते हैं और आपको पास वाली दुकान से मिल जाती है, उसके लिए आपको पहाड़ नहीं चढ़ना होता, लेकिन उन लोगों को वही चीज़ें लेने के लिए पहाड़ी से नीचे उतरना होता है और वापस पहाड़ी पे चढ़ना होता है। उसके साथ ये रिस्क भी होता है कि बारिश वगैरह के टाइम पे अगर चट्टान जैसे गीली होती है ना, गीली मिट्टी, तो वो कैसे भुरभुरी होकर गिर जाती है, उसी तरीके से जो चट्टान है वो अगर चटक गई तो वो भी गिरने का डर रहता है। तो एक खतरा भी है, प्लस में इतनी असुविधा भी है। तो ये दोनों ही रीज़न होते हैं कि इन दो जगहों पे बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस कि आम सामान ले जाने और ले आने के लिए भी इतनी दिक्कतें से देखनी पड़ती है। तो इसीलिए जो लोग कह सकते हैं कि अपने वक्त वक्त पे घर से बाहर जाते हैं नौकरियों के लिए, और इस जगह पे नौकरियां भी नहीं होती, नौकरियां इसलिए नहीं होती कि यहाँ तक कोई आएगा नहीं, तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। और जहाँ जब ये दूसरी जगह चले जाते हैं तो वहाँ की सुविधा, वहाँ की जितनी भी कह सकते हैं एक तरीके से अपॉर्चुनिटी, वो सारी चीज़ें देखने के बाद वो लोग वापस नहीं आते। वो लोग वापस गांव घूमने तो आते हैं, पर दोबारा से वैसे रहने के लिए नहीं आते। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे उस जगह की आबादी को कम कर देता है और मैदानी इलाकों की आबादी को बढ़ा देता है। खुद आप अपनी क्लास में अगर पूछेंगे, अपने माँ बाप से पूछेंगे या अपने जितने भी क्लास में, तो आप सभी किसी ना किसी गांवों से, ज़्यादातर, मैं सबका नहीं कह सकती, पर ज़्यादातर किसी ना किसी राज्य से और किसी ना किसी गांवों से ज़रूर आए होंगे। ये सारी चीज़ें ज़रा प्रैक्टिकल आप करके देखिएगा, इसमें खूब मज़ा भी आता है और अलग अलग राज्यों के बारे में, अलग अलग इलाकों के बारे में पता भी चलता है। इसके बाद बात करते हैं जनसंख्या वितरण, जिस टॉपिक के बारे में हम यही सारी चीज़ें बात कर रहे थे कि जनसंख्या वितरण किस तरीके से होता है। एक तो रीज़न ये भी है कि हाँ, जहाँ असुविधा होती है तो माइग्रेट हो जाते हैं लोग, ये तो सबसे बड़ा रीज़न है। इसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि जनसंख्या वितरण ऐसे भी होती है जिसमें कह सकते हैं कि एक तरीके से जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ एक तो लोग कम हैं, तो वहाँ पे चाहे वो लोग रहें भी, लेकिन तभी भी उनका जो वृद्धि दर है, वृद्धि दर मतलब कि उनकी जो जनसंख्या बढ़ रही है, उनकी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो उतनी नहीं बढ़ सकती जितनी कि मैदानी इलाके जो हैं वहाँ की बढ़ती है। क्योंकि मान लीजिए कहीं पे 100 लोग रहते हैं और कहीं 20 लोग रहते हैं, अगर दोनों रहें भी तो भी अगर आबादी है और सब 100 परिवार हैं, मान लीजिए 100 परिवार नीचे हैं मैदानी इलाकों में और 20 परिवार जो हैं वो पहाड़ी इलाकों में हैं, 20 परिवारों के घर में अगर दो दो बच्चे भी होंगे तो भी उतनी जनसंख्या नहीं हो सकती या मानव संसाधन उतना नहीं हो सकता जितना जो 100 परिवार हैं उनके घर में जो बच्चे होंगे उनके बराबर। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो कर देता है, एक कह सकते हैं जियोग्राफिकल तरीके से भी और हर तरीके से जनसंख्या वितरण में। यही सेम चीज़ जब हम दुनिया पे अप्लाई करते हैं, मतलब वर्ल्ड के उसमें देखते हैं, सेम यही चीज़ उस पर भी अप्लाई होती है। जैसे देश हैं, अमेरिका हो गया है ना, इसके अलावा कह सकते हैं चाइना, रूस, ये सारे जितने हैं ये सारे मैदानी इलाके हैं, इनका मौसम जो है काफ़ी कह सकते हैं प्लीजेंट है रहने के लिए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा आबादी भी देखी जाती है, जबकि कुछ वर्ल्ड के ऐसे इलाके हैं जहाँ इतनी ठंड या इतनी गर्मी होती है कि वहाँ पर जो है ज़्यादा लोग नहीं रहते, जैसे कि अंटार्कटिका, वहाँ इतनी ठंड है कि वहाँ मानव जो है नहीं रहते, मानव नहीं रहते वहाँ, पेंगुइन जो है वो रहते हैं, बहुत कठिन है वहाँ का जीवन। और उसके अलावा अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में बात करूँ तो दक्षिण दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप, उत्तरी पूर्व उत्तरी अमेरिका जो है, ये क्षेत्र जो है बहुत घने हैं। इन मतलब लगा लीजिए कि ज़्यादातर विश्व की जो आबादी है वो इसी में है, लगभग 60% तो इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। अब ये थोड़ा एक न्यू टॉपिक आया है, तो जनसंख्या वितरण से ही रिलेटेड, लेकिन घनत्व है। घनत्व को हम अगर इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर, कि एक कहते हैं डेंसिटी क्या है, डेंसिटी मतलब कि घनापन। अब इसको ज़रा एक्सप्लेन करती हूँ कि मान लीजिए आपके आपका एक पूरा एरिया है रहने का, वहाँ पे 100 लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं और मतलब पूरा एरिया जो है वो 100 मीटर का है, 100 लोग 100 मीटर। तो अगर मैं पूछूँ आपसे कि एक पर्सन को या एक व्यक्ति को अगर मुझे जगह देनी है रहने के लिए, तो मैं उसे कितना एरिया दूंगी, यानी कि एक व्यक्ति 1 मीटर, 100 व्यक्ति हैं तो 100 मीटर, यानी कि क्या आया जनसंख्या घनत्व, तो एक व्यक्ति के लिए 1 मीटर है ना। तो सेम यही चीज़ है जनसंख्या घनत्व भी, कि आप देखते हैं कि हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति के लिए कितने पर मीटर या कितना जो भी एरिया है वो एक व्यक्ति के लिए है, एक इंसान के लिए है। और ये मैं कह सकती हूँ कि ये डिफरेंट होता है हर जगह पे। जहाँ पहाड़ी इलाके हैं वहाँ जो है जनसंख्या घनत्व डिफरेंट होगा, क्योंकि वो एरिया बहुत बड़ा है पर लोग रहने के लिए नहीं है। मैदानी इलाकों में इसका उल्टा है, मैदानी इलाकों में ज़मीनें जो हैं कम हैं लेकिन लोग रहने के लिए बहुत हैं और वो लगातार आते रहते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, अब बात कर लेते हैं कि जनसंख्या वितरण मतलब कि जो भी कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है जनसंख्या का, वो उसको सबसे ज़्यादा कह सकते हैं इफ़ेक्ट करने वाले या उसको बनाए रखने वाले जो फैक्टर हैं, जो मेन कह सकते हैं रीज़न है, वो क्या क्या है। तो स्थलाकृति, स्थलाकृति मतलब कि स्थल की आकृति, स्थल जमा आकृति। स्थल मतलब ज़मीन, जो भी वो ज़मीन है भूभाग है, और आकृति मतलब वहाँ की बनावट। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका है इसके बारे में कि स्थल मतलब कि पहाड़ी इलाके, पठार, नदी के इलाके या फिर वो इलाके जो रेगिस्तान में आते हैं। बात सिर्फ यही नहीं होती कि जहाँ पहाड़ है वहीं पे लोग नहीं रहते, बात ये भी है कि जहाँ रेगिस्तान होता है, जहाँ पे कह सकते हैं कि पेड़ पौधे फल फूल नदियाँ पानी ये सब नहीं होते, वहाँ पे भी लोग नहीं बसते। वो तो अब है, टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू पाइपलाइंस है, इसके थ्रू जो है पानी पहुंचाया जा रहा है हर कोने, तो दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए लोग वहाँ बस सकते हैं। नहीं तो पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। याद करिए जब हम बात करते हैं या पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की तो या आर्य सभ्यता की, तो वो दोनों ही जो है नदी किनारे ही बसे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें क्या क्या चीज़ें समझने को प्रेरित करती हैं कि जीवन जीने के लिए जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले तो पानी है, दूसरी उपजाऊ ज़मीन है, और तीसरा हरियाले हरे भरे खेत, और जहाँ खनिज मतलब पूरा संसाधन जो है जहाँ होते हैं लोग या कह सकते हैं मानव है वहीं रहता है, उस जगह नहीं रहते जहाँ पर इन सब चीज़ों का अभाव है, मतलब कि कमी है। उसके बाद बात करते हैं जलवायु की, वेदर, जलवायु को इंग्लिश में बोलते हैं ना वेदर। वेदर यानी कि अगर कहीं पे मान लीजिए बहुत नदी भी है लेकिन वहाँ ठंड इतनी है कि वो नदी जमी हुई है, वहाँ इंसान नहीं रह सकते, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए जलवायु की वजह से वहाँ भी जनसंख्या नहीं होगी। जैसे कि सियाचिन जो कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है वॉर बैटल फील्ड में, तो वहाँ पे जो है इंसान नहीं रहते, वहाँ सिर्फ फौजें तैनात होती हैं, वो भी सिर्फ 3 महीने के लिए, 3 महीने बाद उनकी भी पोस्टिंग हो जाती है, और वहाँ पानी पीने तक के लिए नहीं होता। वहाँ की बात अगर मैं आपको बताऊँ तो ये भी कहा जाता है कि अगर किसी इंसान ने वहाँ पे जैकेट के बगैर जो है अपनी उंगली तक बाहर निकाली, या फिर जो अपनी बंदूक हो या ट्रिगर पे उन्होंने हाथ रखा, तो उनकी जो उंगली है वो पूरी जम जाती है और खून जो है नीला पड़ जाता है, और उसे कह सकते हैं हटाने के लिए वो उंगली काटनी पड़ती है, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता जो है नहीं होता। तो इस तरीके की कह सकते हैं बर्बरता, ठंड में भी लोग रहते हैं जबकि वो इलाके रहने लायक नहीं है, तो वहाँ सिर्फ कह सकते हैं मिलिट्री पोस्ट के अलावा और कोई इंसान रहता ही नहीं है। उसके बाद बात करते हैं मृदा की, मृदा मतलब मिट्टी। मिट्टी जो है वो भी सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जनसंख्या में। अब मान लीजिए जहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ ही नहीं है, तो वहाँ लोग क्या उगाएंगे और क्या खाएंगे। वहाँ के अगर मान लीजिए वहाँ पे पानी भी है, लेकिन फिर भी जैसे कि हमने पहले के अपने कई आंदोलनों में पढ़ा है कि नील की खेती की वजह से जो ज़मीनें थी वो बंजर हो जाती थी, अगर उसी तरीके की कहीं ज़मीन बंजर है तो आप किस तरीके से वहाँ पे खेती करेंगे। इसीलिए वहाँ की ज़मीनें छोड़ के आपको प्रवास करना पड़ेगा, मतलब कहीं और जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप खेती नहीं कर सकते तो आप क्या खाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि चौथा फैक्टर क्या इम्पोर्टेंट है। चौथा फैक्टर है जल। जल नो डाउट एक बहुत इम्पॉर्टेंट, या कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, जल ही जीवन है जो नारा दिया जाता है वो एकदम सही दिया जाता है, क्योंकि जल के बगैर कोई जीवन सच में नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन और आर्यवर्त सेवा या कोई भी मेसोपोटामिया का ही आप एग्जाम्पल ले लें तो ये कह सकते हैं कि तीनों ही चीज़ें जो हैं एग्जाम्पल हैं, एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि विदाउट जो वाटर है इंसान कभी बस ही नहीं सकता, एक सभ्यता पूरी बस ही नहीं सकती। इसके अलावा बात करते हैं पांचवें फैक्टर की, तो वह है खनिज। खनिज लवण जिसमें सारे लोहा, तांबा, रांगा, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो खनिज में आ जाती हैं, और खनिज जो है वो एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज है और बहुमूल्य भी है। ये वो सारे पांच चीज़ें हैं जिसके कह सकते हैं कि जिनके होने पर ये अगर पांच चीज़ें हों तो वहाँ पे पूरी सभ्यता बस सकती है, और अगर ना हो तो वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। खनिज ही तो एक ऐसी चीज़ है जिसके चक्कर में आप देखेंगे कि जब भी हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री जो सबसे जो गुलामी वाला टाइम होता है, अगर मैं एक तरीके से बोलूँ, जिसमें हम 200 साल की गुलामी के बारे में हम पढ़ते हैं, आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं, तो वो जो है मॉडर्न हिस्ट्री में ही आ जाता है। तो उसमें आपने देखा होगा खनिज ही तो था भारत में जिसने अंग्रेजों को अपने पूरे महाद्वीप पार से यहाँ तक बुलाया। पूरा ब्रिटेन से भारत तक कोई बहुत बड़ी दूरी है ये इतनी बड़ी, और खनिज के लालच में ही तो वो वहाँ से यहाँ तक आ पाए। तो खनिज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी सभ्यता या किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं किस किन चीज़ों को, जनसंख्या को। उसके बाद बात करते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक किस तरीके से जो है इन्फ्लुएंस करते हैं जनसंख्या पे। सामाजिक मतलब कि सोशल, सांस्कृतिक मतलब कि कल्चरल, और आर्थिक कारक मतलब कि इकोनॉमिकल। आर्थिक कारक जो है वो इसलिए कि अगर मान लीजिए आप अपने ही एग्जाम्पल लीजिए जो आप खुद इन जनरल लाइफ में देख सकते हैं या भारत में देख सकते हैं कि गांव से लोग शहर आते हैं। क्यों आते हैं? सभी लोग अपना घर जो है वो छोड़ना नहीं चाहते, गांवों में शहरों से ज़्यादा सुविधा है ना, लेकिन फिर भी वो लोग मजबूरन अपने गांव घर छोड़कर जो है शहरों में आते हैं कमाने के लिए, क्योंकि जो रोज़गार नौकरी के अवसर हैं वो उन्हें बाहर ही मिल सकते हैं। गांव में वो चाहे कितनी ही मेहनत कर ले खेतीबाड़ी में, वो पूरे साल लग के खेतीबाड़ी करते हैं, लेकिन फिर भी जो है बाढ़ या किसी भी तरीके से उनकी फसल अगर बर्बाद हो जाए तो सब वेस्ट है, और उसके बाद उन्हें वो रकम भी नहीं मिलती जो उन्होंने उसमें डाली है, ना मेहनत का कुछ मिलता है, इसीलिए वो सब चीज़ें छोड़ के कहाँ जाते हैं, बाहर नौकरी करने। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न जो है आर्थिक कारक है जनसंख्या के लिए। फिर वो यहीं आते हैं, नौकरी करते हैं और यहीं पे बस जाते हैं, जबकि उनके राज्य जो हैं वो पूरी तरीके से जो है या उनके घर जो हैं फिर बंद हो जाते हैं, वहाँ पर वापस नहीं जाते या कभी कभार जाते हैं। सांस्कृतिक कारक, अब सांस्कृतिक कारण कौन कौन से हैं जिसकी वजह से जो है आबादी होती है, तो ये कह सकते हैं कि जहाँ पे जिसकी संस्कृति बसी है वहाँ पे लोग जाना ज़्यादातर पसंद करते हैं, जैसे कि वाराणसी, बनारस, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कल्चरल हेरिटेज आपको देखने को मिल जाता है। कल्चरल हेरिटेज कैसे, वहाँ पे एक तो वो मैदानी इलाके भी हैं, ऊपर से अगर हम कहीं प्रवास करने का, कहीं जाने का सोचते भी हैं तो हम उसी जगह जाते हैं जहाँ हमारे तरफ के लोग, हमारे तरफ मतलब कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं उस जगह के लोग सबसे ज़्यादा हों, वहाँ हमारा कल्चर, जो मान्यताएं हम मानते हैं उस तरीके के लोग हों, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हिंदू है तो वो हमेशा वही इलाके ज़्यादातर चुनेगा जहाँ आस पड़ोस में उसके रिश्तेदार या कह सकते हैं हिंदू मोहल्ले जो होते हैं वो। ये एक बाय नेचर चॉइस है और इस चीज़ को हम किसी भी और चीज़ों से नहीं तोल सकते, किसी भी चीज़ों से नहीं। ये सेक्युलरिज्म भी अगेंस्ट नहीं जाता, बस ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम जिस भी वैल्यू से, हम जिस भी संस्कृति से बिलोंग करते हैं हम ज़्यादातर उन्हीं लोगों के आसपास कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो जाता है कि किस जगह पे जो है हम प्रवास कर रहे हैं, मतलब कि जा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं वाले जगह पे, मतलब कि आपने देखा होगा कि एक अगर आप एक शहर में रहते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में ही हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट एरियाज देखते हैं, कुछ एरियाज बुरे होते हैं, कुछ एरियाज बहुत अच्छे होते हैं। लोग नाम लेते हैं कि हम इस जगह पे रहते हैं, तो हम अंदाजे लगा लेते हैं कि हाँ ये एरिया जो है वो अच्छा है ना, या फिर ये एरिया जो है ख़राब है। वो किस लिए? जहाँ पे लोगों को सारी सुविधाएं मिलती हैं, वो जो इलाके होते हैं वहीं पे सब ज़्यादातर जो प्रवास करते हैं वो जाना अच्छा समझते हैं, ताकि उनको जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी जन सुविधाएं हैं, वो बहुत आसानी से मिल सके। चाहे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके ऑफिस से रिलेटेड हो, ताकि उनका समय बचे और उनके लिए सुविधा जो आसानी रहती है पहुँचने में वो भी जो है बनी रहे। इसके बाद बात करते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर क्या होता है और इसका पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जन्म दर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बर्थ रेट मतलब कि कितने बच्चों के पैदा होने का जो रेट है, मतलब कि आप लगा लीजिए कि एक साल में, पिछले एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए हैं वो, और उसके साथ साथ पिछले एक साल में बच्चे तो कितने पैदा हुए हैं उसमें से वो हटा के, जिनका कह सकते हैं जो बच्चे पैदा होते ही मर गए उनको हटा करके जितने हुए हैं वो, और उनके अकॉर्डिंग जो है मृत्यु दर। मृत्यु दर मतलब कितने लोग जो हैं वो एक साल में, या जितने भी साल का डेटा निकालते हैं, 5 साल, 2 साल, 10 साल, उसके अकॉर्डिंग कितने लोग जो मरे हैं। उसके बाद उन दोनों डेटाओं को एनालाइज करते हैं कि मतलब जैसे कि जन्म दर या मृत्यु दर में से जो है जन्म दर माइनस कर दी जाती है, उसके बाद देखा जाता है कि लोगों की पॉपुलेशन जो है वो कितनी बड़ी है। तो ये एक तरीके से इसको डेटा कलेक्ट करने वाले जिस भी तरीके से इसे यूज़ करें, और उसके बाद अंदाजन लगाया जाता है कि जो हमारी जनसंख्या है वो पिछले 10 सालों में कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है, एक ही जगह पे स्थिर है या और कुछ। उसके अलावा बात करें अगर हम प्राकृतिक वृद्धि दर की, एक ये भी देखा जाता है अंदाजन कि क्योंकि एक नेशन है, हर चीज़ हम क्राइसिस के रूप में नहीं दे सकते, एक जो नेचुरल, जैसे कि हमने कहा कि हमारे जो देश की जनसंख्या है वो 2% के उससे बढ़ रही है एवरेज से, मतलब कि हमने इस साल सर्वे किया तो वो 2 साल पॉपुलेशन बढ़, 2% पॉपुलेशन बढ़ी, अगले साल भी 2% बढ़ी, उसके अगले साल भी 2% बढ़ी, तो ये एक तरीके से एवरेज हुआ कि मतलब प्राकृतिक दर जो है, प्राकृतिक वृद्धि दर वो एकदम स्टेबल है। जबकि जैसा कि 1999 में देखा गया है कि 1999 के जो सन को है जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया गया। जनसंख्या विस्फोट क्यों? क्योंकि उस साल जो है जन्म दर, बच्चों की जन्म दर जो थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उसको, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा बच्चों के जन्म दर की वजह से ही जनसंख्या विस्फोट का सन कहा गया। तो ये एक तरीके से मार्क है कि स्टेबल ग्रोथ नहीं है, कभी एकदम से डाउन हो जाती है, और डाउन तो खैर होती ही नहीं, और एकदम से बढ़ जाती है, तो ये जो रेट बढ़ जाती है, बैलेंस्ड नहीं रहती, उसको जो है कह सकते हैं कि ये पॉपुलेशन बढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं कि उत्प्रवासी और आप्रवासी में क्या अंतर होता है। उत्प्रवासी वो लोग होते हैं जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देशों में जाते हैं, जबकि प्रवासी और अप्रवासी तो आपको पता है कि अपने ही देश में अगर हम कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हम प्रवासी कहे जाएंगे, लेकिन अगर देश के एक इलाके से दूसरी जगह तो उसे प्रवासी बोलेंगे, और अगर देश से एक अलग देश में जा रहे हैं तो उत्प्रवासी, और अप्रवासी हम उन्हें बोलते हैं जो अपने देशों से, अपने जो भी मुल्क हैं वहाँ से हमारे देश के में आते हैं। जैसे कि आप देखिए कि अफ्रीका वगैरह के जो लोग होते हैं वो आपने देखा होगा कि भारत के बहुत सारे रीजन्स में, स्पेशली दिल्ली में जो है दिख जाते हैं, तो वो कौन है? अप्रवासी। जबकि अमेरिका में हमारे तरफ के लोग, या और भी बहुत सारे जो मुल्क हैं उसमें हमारे हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो गए हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? उत्प्रवासी। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप, अब जनसंख्या जो है वो चेंज किस तरीके से होती है, उसका जो जितना भी चेंजनेस है उसके प्रतिरूप क्या है, तो इसमें कह सकते हैं कि जनसंख्या की जो दर है, जो उसका कह सकते हैं डेटा है, उसके थ्रू ही, या कह सकते हैं स्वास्थ्य, जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है ना, फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं तो वहाँ पर जो है आबादी भी बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पर उन सारी चीज़ों को जो बहुत सारे लोग रह सकते हैं और डील भी कर सकते हैं, डील इन द सेंस मतलब कि जहाँ लोगों के रहने जीने लायक सुविधा है वहीं तो लोग आके बसेंगे भी, तो इसीलिए वहाँ पे जो है दर ज़्यादा हो जाती है, और जहाँ पर ये सारे चीज़ें नहीं होती वहाँ पर की जनसंख्या प्रतिरूप जो है वो भी नहीं होता। इसके बाद बात करते हैं जनसंख्या संगठन की। किसी देश में जो है जनसंख्या कितनी भी ज़्यादा हो पर उससे देश के विकास पे जो है इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जापान और बांग्लादेश, दोनों ही देशों की कह सकते हैं पॉपुलेशन जो है ज़्यादा है, लेकिन जापान में फिर भी ग्रोथ है, जबकि बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, इन सब में नहीं है। चाइना में भी ग्रोथ है, लेकिन क्यों, ये चीज़ क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मानव संसाधन को जो है यूज़ ही नहीं किया। अगर मान लीजिए, मानव संसाधन का एक और एग्जांपल से देना ज़्यादा बेहतर होगा कि जापान, जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे संसाधन, अब संसाधन से कह रही हूँ कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है, और प्राकृतिक संसाधन नहीं है इस वजह से ये माना जाता है कि जिस देश में प्राकृतिक संसाधन ना हो वो देश गरीब होता है या पिछड़ा हुआ होता है, जबकि जापान के केस में ऐसा नहीं है। जापान के देश में जो वहाँ के लोगों की टेक्नोलॉजी है, जो उनका दिमाग है, वो इतना तेज़ है कि उन्होंने आए हुए अपने भूकंप के दिनों में भी, अपने बुरे दिनों में भी, उन्होंने 10 साल के अंदर जो है अपने देश में ओलंपिक, बहुत बड़ा इवेंट होता है ओलंपिक, अपने देश में उन्होंने खिलवाया था। तो ये बहुत, जापान जैसे छोटे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। जबकि ब्राज़ील में जो है रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसकी भरमार है, लेकिन फिर भी वो देश गरीबों में आता है। गरीबों इन द सेंस मतलब कि विकासशील देशों में आता है, जो अभी भी ग्रोथ जो है वो कर रहा है। ऐसा क्यों? सेम रीज़न यही है कि वहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी, या कह सकते हैं मानव संसाधन में बहुत कमी है। जापान जो है अपने एजुकेशन सिस्टम, अपने हेल्थ, अपने हर तरीके की कह सकते हैं विकास के लिए अपने लोगों पे, मतलब कि जो भी वहाँ के मानव हैं उन पे बहुत ध्यान देता है, उनकी वैल्यूज़ पे बहुत ध्यान देता है। जबकि ब्राज़ील या भारत के इलाकों में ऐसा नहीं है। भारत में अभी भी बहुत सारी चीज़ों में कह सकते हैं कि बेसिक एजुकेशन की कमी है, उसके अलावा स्वास्थ्य का भी कुछ ठीक हालात नहीं है। मतलब सारी ही चीज़ें अगर आप बेसिक एक क्राइटेरिया सेट करें कि हेल्थी कौन है, तो वो सारी चीज़ों में भी बहुत दूर है। भारत हो, ब्राज़ील हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कोई भी आप ले लीजिए देश, ये जितने भी विकासशील देश हैं उन सब में ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए कहते हैं कि मानव संसाधन जो है अगर आप उसे बेस्ट यूज़ करें और उस रिसोर्स को बहुत अच्छे से यूज़ करें, जैसे कि अगर हमारे इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा बना दिया जाए, जिसमें एजुकेशन को रटने से ज़्यादा या मार्क्स ओरिएंटेशन से ज़्यादा वैल्यू ओरिएंटेड बना दिया जाए, तो जो है हमारा आउटपुट जो भी आएगा वो बहुत बेहतर होगा, है ना। जैसा कि स्किल इंडिया शुरू भी किया गया है, जिसमें बहुत सारे स्किल से रिलेटेड चीज़ें सिखाई गई हैं, ऐसी चीज़ें जिसे हम यूज़ करके जो है और ज़्यादा नौकरियां जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए कि नौकरियां जनरेट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक मानव संसाधन का ही कह सकते हैं टॉपिक के अंदर ही एक है। कि प्रवास में एक टॉपिक ये भी था कि नौकरियां ना मिलने की वजह से जो है लोग गाँवों से शहर आ रहे हैं। अगर आप सोचिए कि कौशल विकास योजना जो है या कौशल विकास जो प्रोग्राम है उसके थ्रू अगर सारे कोई ना कोई स्किल्स ढूंढ लें और उसके बाद अपना ही या फिर स्टार्टअप जो है उसके ज़रिए जो अपना कारोबार करें, उसमें नए नए तरीके, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, जिनमें उन्हें बैठे बैठे कह सकते हैं अपने घर से, अपने गाँवों से ही बैठे बैठे वो सारा कारोबार संभाल सकें थ्रू ई सिस्टम, कहते हैं ना डिजिटल सिस्टम के थ्रू, तो कितना ज़्यादा कह सकते हैं एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार भी जनरेट होगा, अच्छी कीमत भी मिलेगी और ग्रोथ भी होगा। क्योंकि जो 70% ग्रामीण इलाकों के लोग हैं, मतलब जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको नौकरियां मिलेंगी, और नौकरियां ही नहीं, अच्छी नौकरियां मिलेंगी। जब नौकरियां मिलेंगी तो उनके पास पैसे भी होंगे, जब वो कमाएंगे तो ऑब्वियसली उनके पास जो है उनका वेतन भी होगा, पैसे भी होंगे। जब उनके पास पैसे होंगे तो वो उन पैसों को या तो बचत में डालेंगे या उन्हें खर्च करेंगे। अगर वो बचत में भी डालते हैं तो भी कह सकते हैं कि जो बैंक्स हैं वो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करती है, और उसका जो इंटरेस्ट है मतलब उसमें, और जो जमा की हुई राशि उसमें हमारे इंटरेस्ट डालती है, तो उसके वैसे भी फ़ायदा है। और अगर हम वो कहीं खर्च करते हैं तो वो भी किसी अगले आने वाले का वेतन बन जाता है। और हम अगर पैसे खर्च करते हैं तो हम उसके साथ साथ अपनी सेहत पे खर्च करेंगे, हम अपने खाने पे खर्च करेंगे, और इस तरीके से जो है हमारी टोटल जो है हमारी ग्रोथ होगी। फिर उसके बाद ग्रामीण और शहरी इलाकों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, सबका विकास हो जाएगा। तो ये मानव संसाधन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि किस तरीके से हम जो है अपने देश के युवाओं को, युवाओं ही नहीं जितने भी मानव हैं, उनका बेस्ट यूज़ कर उनकी वैल्यू को इंक्रीज करके कितना उनसे लाभ ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जितने ये तीन ये जितने भी 6 चार्ट दिए हुए हैं, इसमें शो किया हुआ है कि मृत्यु दर और जन्म दर, इन दोनों को किस तरीके से जो है हम देखते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सा जो है वो सबसे बेहतर कंडीशन में है। आप देख सकते हैं कीनिया, इसमें एक 6.7 चित्र है कीनिया का पिरामिड। इसमें पिरामिड तरीके से यही चीज़ सिर्फ शो की हुई है कि किस तरीके से जो है मृत्यु दर और जन्म दर जो है वो रिलेट करता है। ये जो पूरे ब्लॉक्स बांटे हुए हैं, ये ब्लॉक्स वो होते हैं कि 15 से, जैसे कि मान लीजिए 15 से 20 साल तक के बच्चों की जन्म दर क्या, मृत्यु दर जो भी है वो क्या है, और मतलब जन्म दर ये नहीं कि 15 साल पे जन्म, नहीं कि वो 15 से 20 साल तक वो जो बच्चे जन्मे थे वो अभी भी जिंदा है, तो वो चीज़ इधर नापी हुई है और ये चीज़ मार्क की हुई है। जिसके पिरामिड एकदम खड़े और ऐसे होते हैं सपाट लंबे और एकदम कह सकते हैं ढलुआ तरीके से, उनकी जो है कंडीशन हम ख़राब मानते हैं, जबकि जो एक कहते हैं बैलेंस्ड तरीके से दोनों तरफ बराबर होते हैं उसको हम सबसे ठीक मानते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी, सकारात्मक यानी पॉजिटिव कह सकते हैं दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। इस बात को शायद आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो लोगों के पास स्किल है, जो लोग बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उत्साह से भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, होपफुल हैं, वो सारे युवा जो है राष्ट्र के फ्यूचर होते हैं, मतलब देश के फ्यूचर होते हैं, है ना। हम भारतवासी भाग्यशील हैं और हम सारे इन सब चीज़ों के बहुत लकी हैं कि हमारे देश में जो है सबसे ज़्यादा कह सकते हैं यंगस्टर्स कौन, जो 18 से 35 साल की एज के बीच में आते हैं, यानी कि भारत जो है वो सबसे यंग देश इस टाइम पे है, और यही एक रीज़न है कि हम सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं, जो कि हमें करना चाहिए। तो कुल मिला के हमारे इस पूरे चैप्टर को अभी यहाँ पे ख़त्म होता है, और इसमें आपने समझा होगा कि मानव संसाधन जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, मृत्यु दर और जन्म दर इससे किस तरीके से मापा जाता है कि कब नेगेटिव में है पॉइंट, कब पॉजिटिव में है। उसके अलावा जनसंख्या वितरण क्यों होता है, इसके मेन रीजंस क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में जो है इंक्लूड हो जाती हैं, और यहीं पे आपका चैप्टर जो है ख़त्म है। इसके बाद आप इस चैप्टर को रिवाइज करिए, इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर देखिए और इसे क्लास में जो है डिस्कस कीजिए। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।